ओम शांति। गर्भ में पल रहे दो शिशु आपस में बात करते हैं। एक कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस गर्भ से बाहर निकलने के बाद भी कोई जीवन है? दूसरा शिशु कहता है, हाँ मुझे लगता है कि जीवन है, हाँ मुझे लगता है कि शायद बाहर बहुत प्रकाश होगा, ये भी हो सकता है कि शायद हम अपने पैरों से चल सके, ये हो सकता है कि हम इस दुनिया को देख सके इन आंखों से। पहला शिशु कहता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, डिलीवरी इज द एंड, बस यही अंत होगा, उसके बाद जीवन कैसे, अभी तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड नाभि नाल या ये जो रज्जु है मां के, उससे हमारी पालना हो रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, यहां से बाहर जाने के बाद क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। दूसरा शिशु कहता है, मुझे लगता है हम जीवित रहेंगे, मुझे लगता है हमें सब कुछ मिलेगा, पहला कहता है मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बाहर जाने के बाद हमारा पोषण कैसे होगा। दूसरा कहता है, मुझे लगता है शायद हमारी मां होगी, पहला कहता है मां, कौन मां, कैसी मां, कहां है वो। दूसरा कहता है वो अब भी है, पहला कहता है अगर अब भी है तो मैं देखना चाहता हूं कहां है वो, अभी मुझे क्यों नहीं दिखती वो। दूसरा कहता है हम उसी में हैं, हमारा अस्तित्व ही उससे है, हम उसी के भीतर हैं, उसी में हैं, उसी से है, उसके अंदर ही हमारा जीवन है। पहला कहता है मैं नहीं मानता, पहले मुझे दिखाओ तो मानूंगा। दूसरा कहता है क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो और फील करो, अपनी आंखों को बंद करो और फील करो उस मौन में और उस सन्नाटे में, उस मां की आवाज सुनाई देगी जिसमें हम हैं, जिससे हम हैं, जो हमारी पालना कर रही है। ये कहानी किसी अमेरिकन लेखक ने लिखी है, वेन डायर ने अपनी किताब टू माय सेक्रेट हार्ट में। जब भी पालना शब्द आता है तो आंखों के सामने कौन आता है, मां। और यदि पालना करना है तो क्या बनना पड़ेगा, मां। पालना पिता की भी होती है, बड़े भाई की भी होती है, बड़ी बहन की भी होती है, दादा दादी की भी होती है, नाना नानी की भी होती है, सीनियर्स की भी होती है, परंतु पालना अपने चरम सीमा पर कब पहुंचती है? जब वो मातृत्व का रूप धारण करती है। वो जो पालना होती है वो सर्वश्रेष्ठ पालना होती है। परंतु उस पालना में यदि मोह मिश्रित हो जाए तो वो पालना भी दिशाहीन हो सकती है। ये सारी सृष्टि हमारे गर्भ में है और हम कौन है उस सृष्टि की मां। सुंदर सा एक समान है, इस सृष्टि का केंद्र मैं हूं। आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इस संपूर्ण सृष्टि की पालना कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मुझसे ही सृष्टि को पोषण मिल रहा है, डिवाइन न्यूट्रिशन। और हम स्वयं किसके गर्भ में हैं? शिव मां के गर्भ में। और यदि उसके प्रेम को महसूस करना है तो क्या करना पड़ेगा? एकांत में और मौन में उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा। वो निरंतर हमसे कुछ कह रहा है, पर हमारी सारी ऊर्जा लोअर कॉन्शियसनेस में जा रही है। नीचे का वार्तालाप, व्यर्थ का वार्तालाप, व्यर्थ की चिटचाट और व्यर्थ के की बातें जो हम दूसरों से दिन भर करते रहते हैं, जब तक ये ना रुके तब तक हमारा खुद के साथ कनेक्शन नहीं होगा और परमात्मा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अध्यात्म के तीन आयाम हैं, मौन, एकांत, अंतर्मुखता। आई शैल स्पीक टू थी इन साइलेंस। मैं बात तुमसे करूंगा, भगवान उवाच, परंतु तभी तुम सुन पाओगे जब तुम मेडिटेटिव स्टेट में हो, मौन में हो। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी, उससे भी पहले और एक बात। मनुष्य चेतना तीन भागों में विभाजित हो सकती है, या फिर मनुष्य तीन भागों में विभाजित हो सकता है। एक वो मनुष्य है जो डिसकनेक्टेड है, पृथक है। उनको वो यूनिटी कभी महसूस ही नहीं हुई सबके साथ। उनको यही लगता है, मैं अलग, ये सब लोग अलग, संसारी लोग। गृहस्थ में रहते हैं, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, अपने दुख दर्द में डूबे रहते हैं। अध्यात्म का उन्हें कुछ पता नहीं, मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है। उसी कॉन्शियसनेस में पूरा जीवन बीत जाता है। मैं, मेरा पति, पत्नी, बच्चे, घर, गृहस्थी, बिजनेस, जॉब, स्टेटस, पोजीशन, समाज, बस सारा जीवन एक छोटे से दायरे में बीत जाता है। एक ये कैटेगरी है, एक ये वर्ग है, एक ये श्रेणी है लोगों की। एक दूसरी बहुत ऊंची श्रेणी है अध्यात्मवादियों की। उसमें भी साधारण नहीं, जो सर्वोच्च अवस्था को पा जाते हैं वो एक यूनिटी, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सब में जैसे मैं ही मैं हूं। वेदांत की जो फिलॉसफी है, भक्ति की सर्वोच्च अवस्था जो है, उसमें एक योगी या एक भगत ऐसा अनुभव करता है, ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन ऑफ द वन, सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगपानी। एक तरफ भक्त कहता है और ज्ञानी के लिए सब सब चेतन हो जाता है, सब कुछ वननेस सब में। सागर के तट पर खड़ा है जैसे सागर और मैं एक ही हूं, नदी के तट पर है नदी और मैं एक ही हूं। मनुष्य ही नहीं, जड़ चेतन सब जल सब वस्तुएं, सब में एक वननेस दिखाई देता है। वन इन्फिनिट कॉन्शियसनेस फ्लोइंग इन एवरीथिंग, सब में एक ही एक है। अगर कोई, इसीलिए ऐसा व्यक्ति किसी को आहत नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा यदि दुखी होता है तो मैं दुखी होता हूं, दूसरा हर्ट होता है तो मैं हर्ट होता हूं। ये सारे उदाहरण हमको धर्मस्थापकों के जीवन में मिलते हैं। महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, तपस्वी आत्माएं, संत आत्माएं, उनके जीवन में दिखाया गया है संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह हृदय है उनका, पिघलता है, क्योंकि वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, चेतना अविभाजित हो गई है। सब सब में मैं हूं, मैं उनमें हूं, वो मुझ में है, ये अनुभूति। संसार की फिलॉसफी तीन फिलॉसफियों में विभाजित है, एक भक्ति, एक सन्यास, एक ब्रह्मा कुमारी। एक भक्ति जिसमें द्वैतवाद है, परमात्मा आत्मा अलग, सन्यास अद्वैतवाद, वो और मैं एक, और बाबा का दिया हुआ ज्ञान जिसमें आत्मा परमात्मा अलग है परंतु आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है बाप समान। 1, 2 और 3, और अगर देखा जाए तो तीनों में ही सर्वोच्च अवस्थाएं लगभग समान है। भक्ति में भी भक्त, भक्ति और भगवंत एक हो जाते हैं अंत में, वो अलग नहीं रहते। फिर भक्ति करते 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 भक्त को लगता है मैं ही जैसे भगवान जैसा हो गया हूं। कृष्ण गाती गीती कृष्ण ध्याति चित्ती हेती हेची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने, गोपिया कृष्ण जैसे बन गई है। उद्धव आया है, उद्धव को समझाने आया है, पर वो कृष्ण के जैसी बांसुरी लिए खड़ी हुई है। कोई कहती है यहां कृष्ण था, उनके लिए वो भगवान है ही नहीं, रहा ही नहीं। वन कॉन्शियसनेस, ये भक्ति की सर्वोच्च अवस्था, संन्यास की सर्वोच्च अवस्था। संन्यास में व्यक्ति डिनाय करता है ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और उसमें आगे आगे बढ़ते जाता है। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि में पहुंचता है। अयमात्मा ब्रह्म तत्व खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि की अवस्था में पहुंचता है कि सब मैं ही हूं अब सब कुछ। और इस ज्ञान में हम चलते हैं, मैं कौन हूं, आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। यहां से शुरुआत होती है और धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, और अंत कहां पहुंचता है, मैं कंबाइंड हूं, बाप समान हूं। कई बार इसके पहले भी सुनाया है, तीनों अवस्थाएं जीसस क्राइस्ट के जीवन में दिखाया। उससे पूछा गया तुम कौन हो, वो कहता है आई एम सन ऑफ गॉड, भक्ति मार्ग, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। उससे पूछा जाता है तुम्हारे पिता कहां है, तुम्हारा क्या संबंध है तुम्हारे पिता से, वो कहता है माई फादर इज इन मी एंड आई एम इन माई फादर, वो मुझ में है मैं उसमें हूं। फिर भी उससे पूछा जाता है फिर भी बताओ आखिर तुम्हारे पिता है कहां, वो कहता है माई फादर दैट आर्ट इन हेवन, हेवन कहां है, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। और कंफ्यूजिंग, अल्टीमेट बताओ फाइनल तुम्हारी, तुमको कहना क्या है। और एक लास्ट स्टेटमेंट बाइबल में जिस वजह से उसको सूली पर चढ़ाया गया, माई फादर एंड आई आर वन, आई एम सन ऑफ गॉड से चालू होती है यात्रा कि मैं उसका पुत्र हूं। नेक्स्ट स्टेज वो मुझ में और मैं उसमें, और तीसरी अवस्था वो और मैं एक ही, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत, द्वैतवाद। ये यहां पर भी हमारी अवस्था है। हम शुरुआत कहां से करते हैं यात्रा की, मैं आत्मा हूं, किसकी संतान हूं, और वो सर्वव्यापी नहीं है, पर हमारे गीतों में है तुम तो यहीं कहीं बाबा, कहां हो, मेरे आस पास हो, निरंतर पास हो, हम उसी के गर्भ में हैं, बस आंख बंद करो और सुनो उसकी आवाज। जहां मैं हूं वहां वो है, उसकी छत्र छाया में मैं पल रहा हूं। और धीरे धीरे हम कहां पहुंचते हैं, बाप समान अवस्था में। तो हम कह रहे थे संसार में तीन प्रकार से विभाजन है। पहले वो संसारिक आत्माएं, भौतिक आत्माएं, मटीरियलिस्टिक पर्सनैलिटीज, जिनके लिए वस्तु ही सब कुछ है, आई एंड इट का रिलेशन है, एक कहता है आई एंड धाओ का रिलेशन, मैं और तुम, उसके लिए व्यक्ति वस्तु है, व्यक्ति भी वस्तु है, या फिर व्यक्ति वस्तु बन चुके हैं, ये एक कैटेगरी है लोगों की। इसके ऊपर अध्यात्मवादी है जो धीरे 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 धीरे, चाहे भक्ति मार्ग या फिर और दूसरा कोई मार्ग, अपनी चेतना को इतनी ऊंचाई में उठा लेता है कि सब कुछ मैं ही हूं, इसीलिए मैं किसी को भी दुख नहीं दे सकता, किसी को हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के साथ भी कुछ करूंगा तो वो मेरे साथ हो रहा है। इससे भी ऊंची कोई अवस्था हो सकती है क्या? वो आज की मुरली है, यही बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची, अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है इसको, वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सब मैं ही, मुझे खुद ही दिख रहा हूं, मैं ही मैं हूं, ये सब मेरा ही विस्तार है। इससे भी ऊंची अवस्था और एक है, वो कौन सी? ये सारा जो कुछ है, इसका भरण पोषण लालन पालन करने वाला मैं हूं, ये सारी सृष्टि की एक एक पत्ता जो है उससे मेरा कनेक्शन है, और केवल कनेक्शन नहीं है, उसकी मैं पालना करने वाली आत्मा हूं। ये कितनी हाइटेंड कॉन्शियसनेस है, कितनी ऊंची चेतना की स्थिति है। पर अगर इतनी ऊंची अवस्था है, वो साधारण या ढीले ढाले पुरुषार्थ से नहीं होगी, मन सूक्ष्म हो जाना चाहिए और बहुत शुद्ध हो जाना चाहिए, तो ही वो यूनिटी फील होगी, अन्यथा नहीं। नहीं तो हम अपने दुख दर्द में डूबे रहते हैं। कुछ दिन पहले मुरली थी ना, यहां पर हर एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत, काले गोरे से नफरत करते, एक धर्म वाले दूसरे धर्म से नफरत करते, जहां तहां नफरत ही नफरत है। और यहां हम कौन सी बात कर रहे हैं, यहां विकारों से परे अवस्था है, उससे भी और ऊपर, जहां वन यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, वन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक है कॉन्शियस माइंड, उसके नीचे है सबकॉन्शियस माइंड, उसके नीचे अनकॉन्शियस माइंड, उसके नीचे है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उसके नीचे है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये नीचे और ऐसे ही ऊपर, 14 मंजिल है मनुष्य की चेतना। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी क्या कहा बाबा ने, चार प्रश्न है, पहला हु आर यू, तुम कौन हो, दूसरा तुम्हारे कर्तव्य क्या है, तीसरा कर्तव्य करने की विधि क्या है, और चौथा हलचल में क्या कर रहे हो। हलचल में भी कर्तव्य करना जारी है या फिर रुके हुए हो, तो कौन किससे मिल रहा है, भगवान रचयिता है, किससे मिल रहा है, रचना से, मुरली से समान, केवल निकालने लिखना अलग से और उसको रिपीट करना ये नहीं करना है, उसको क्या करना है, अंदर समा जाना है। जैसे वो स्पंज होता है ना, क्या करता है, सोख कर लेता है। तो हम कौन है, श्रेष्ठ रचना, दूसरा हम कौन है, पूर्वज, हम कौन है, पूज्य, हम कौन है, हम कौन है, थोड़ा सा पहले जड़े, हम कौन है, तना, हम कौन है, फाउंडेशन, हम कौन है, मास्टर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, हम कौन है, रूहानी सोशल वर्कर, हम कौन है, लाइट हाउस, हम कौन है, ऊंची स्थिति में रहने वाले, हम कौन है, हम कौन है, मास्टर सुखदाता, हम कौन है, रहम दिल, हम कौन है, छींटे देने वाले। तो बाबा ने एक समान दिया है कि हम पुच्छ है, हम पूर्वज है, हम जड़े हैं, हम आधार है, हम फाउंडेशन है, नींव है इस सृष्टि की, यदि तुम में व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो एक एक पत्ते में व्यर्थ संकल्प चलेंगे। यदि तुम में विकारों की खींच होती है तो सारी सृष्टि में वो खींच होगी। सबका आधार तुम हो, पूज्य हो, विधि पूर्वक पूजा तुम्हारी होती है। गायन योग्य भी हो और पूजन योग्य भी हो, आदि में भी और अनादि में भी। अनादि में किसके साथ ही हो, डियरेस्ट और नियरेस्ट, और आदि में किसके साथ ही हो, ब्रह्मा के। मैं कौन हूं, बस यही खोज है, मैं कौन हूं। और इसका उत्तर तुरंत नहीं आ जाना है, खोज करनी है इसकी, तुरंत उत्तर नहीं दे देना मैं आत्मा हूं और उसका अगला कौन सी आत्मा हूं, खेल खत्म। खोज करनी है, मैं कौन हूं, Who am I? क्योंकि हमारे अंदर इतने पैटर्न्स, इमोशनल पैटर्न, हमारे चार प्रकार के शरीर है। एक है साकारी देह, एक है भावनात्मक देह इमोशनल बॉडी, एक है मेंटल बॉडी इंटेलेक्चुअल बॉडी बौद्धिक शरीर, और एक है आध्यात्मिक शरीर। ये चारों शरीरों में विकार और रोग भरे पड़े हैं। साकारी शरीर फिजिकल बॉडी, पहले तो इसको रोग मुक्त करना है, फिर वो जब रोग मुक्त हो जाता है तो फिर चालू होता है बड़ा डीप, उससे डीप है इमोशनल बॉडी। इमोशंस आते हैं जो दब गए थे, जो खत्म हो गए थे, पहले शरीर प्यूरिफाई होगा, शरीर की प्यूरिफिकेशन हो गई, शरीर रोग मुक्त हो गया, तो नेक्स्ट चालू होता है इमोशनल डिटॉक्स। इमोशंस बाहर निकलने लगते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन होने बाद उससे भी खतरनाक है मेंटल डिटॉक्स। मेंटल डिटॉक्स अर्थात संस्कार, वो अपने आप उभरने लगते हैं। वो अभी तो उभरते ही नहीं है, पूरे दबे हुए अंदर, वो उभरते हैं तो किंचित किसी परिस्थिति में बाहर आते हैं और छिप जाते हैं, इसीलिए हम उनका कुछ कर ही नहीं पाते, उनसे लड़ाई नहीं कर पाते। क्रोध आया, अचानक आया और चला गया, अब ढूंढो तो है ही नहीं कहीं। अपने विकारों को देखना, दिखाई नहीं देते, क्योंकि जब विकार है तब हम हैं ही नहीं, और जब हम हैं तब विकार नहीं है, तो कैसे देखे। इसलिए यात्रा फिजिकल प्यूरिफिकेशन से चालू हो, इस शरीर से। ये शरीर जितना प्योर होते जाएगा, म्यूकस फ्री, डिसीज फ्री, टॉक्सिन फ्री, तो अपने आप इमोशंस चेंज होंगे, फिर इमोशंस ऊपर आने लगेंगे, आएंगे थोड़े देर रहेंगे और निर्जरा होगी उनकी, फिर नए नए क्रिएट होंगे, पुराने जो संस्कार है वो ऊपर आएंगे, नष्ट होते जाएंगे, नए नए बनेंगे, कर्म संस्कार विनष्ट होंगे। उसके भी गहरा मेंटल डिटॉक्स और फिर स्पिरिचुअल डिटॉक्स। स्पिरिचुअल डिटॉक्स में तो जन्म जन्म के जो विकर्म है, पाप है, वो सब बाहर आते हैं। तो ये यात्रा है, चार प्रकार के शरीर, चार प्रकार का प्यूरिफिकेशन, चार प्रकार की शुद्धि। तो हम कौन है, पूर्वज है, हम कौन है, पूज्य है, हम कौन है, तना है, हम कौन है, जड़े है, हम कौन है, लाइट हाउस है, हम कौन है, फाउंडेशन है, हम कौन है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ब्रह्मा समान। तो ये हम है, अगर ये हम है तो करना क्या है, अब कर्तव्य क्या है, फर्ज अदाई, ड्यूटी, दायित्व। ये नहीं कह सकते, ये इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है अभी कर्तव्य में, ये नहीं कह सकते, ये हमें सर्व आत्माओं की पालना करनी है। एक है लौकिक वाले, एक अलौकिक वाले, एक है सेंटर वाले, सेंटर के बाहर वाले, ये हमारा सेंटर, ये उनका सेंटर, ये मधुबन, ये गैर मधुबन, ये ब्राह्मण, ये गैर ब्राह्मण, ये हमारे डिपार्टमेंट वाले, ये दूसरे डिपार्टमेंट वाले, सब के लिए एक ही। एक जेन स्टोरी है, एक जेन मास्टर है बोकाजू बैठा हुआ है, उससे एक आगंतुक आके मिलता है, बोकाजो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूं, या हम पहले कभी मिले हैं? वो कहता है, मैं आपको नहीं जानता, ना मैं आपसे मिला हूं। ओके, लेट्स हैव कप ऑफ टी। वो कहते हैं, आओ चाय पीते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, बोकाजो उससे फिर पूछता है, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं, या हम पहले कभी मिले हैं? वो कहते हैं, हाँ हाँ मैं आपको जानता हूं, हम आप कई बार मिले हैं। बोलते ओके लेट्स हैव कप ऑफ टी। वहां पर उस मठ का, उस मोनेस्ट्री का मैनेजर बैठा हुआ है, उसको आश्चर्य लगता है, जो पहला व्यक्ति था वो परिचित था और दूसरा व्यक्ति था वो अपरिचित था, पर इसका रिस्पॉन्स क्या था, लेट्स हैव कप ऑफ टी, दोनों के लिए सेम, चाहे तुम मुझे जानते हो ना जानते हो। सेम, वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और थोड़ी देर के बाद वो मैनेजर को कहता है कि लेट्स कम, यू ऑल्सो कम, तुम भी आ जाओ। सेम, ये हमारे गांव का, ये हमारे उधर का, तुम भी पंजाब से और हम भी पंजाब से और हम भी महाराष्ट्र से और तुम भी महाराष्ट्र से, तुम भी कर्नाटक से और हम भी कर्नाटक से, चलो थोड़ा चाय पीते, थोड़ा राउंड लगा के आते हैं, तुम भी वहां से और हम भी वहां से, एकदम अपनापन, और भाषा तुरंत चेंज, हिंदी बंद, उधर की चालू, तेलुगु चैनल चालू, तेलुगु माता मिल गई कि तेलुगु चैनल चालू, पंजाबी माता मिल गई तो पंजाबी चैनल चालू, मराठी माता मिल गई तो मराठी चैनल चालू, एकदम अपनापन। हम कौन है, विश्व कल्याणकारी। हम ऐसा कभी किसको नहीं कहते कि अरे आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई, तुम भी परम धाम से और हम भी परम धाम से, क्या बात है। मन में कितने डिविजन से, प्रोफेशन रिलेटेड डिविजन्स, कास्ट रिलीजन, क्रीड रिलीजन, कितने सारे डिपार्टमेंट रिलेटेड, इसको ब्रेक कर देना। तो हम कौन है, पहला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न था हमारा कर्तव्य क्या है, और कर्तव्य है आत्माओं की पालना करना। पालना अर्थात, पालना शब्द के क्या अर्थ है, पालना शब्द का क्या अर्थ है, सस्टेनेंस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पालना अर्थात क्या करना, पालना करना अर्थात भरण पोषण करना, लालन पालन करना, परवरिश करना, नर्चर करना, सस्टेन करना, देखभाल करना, केयर करना, ये है पालना, ये है पालना। तो हमारा काम क्या है, पालना करनी है, किसकी, सर्व आत्माओं की। एक की पालना करना ही कितना मुश्किल है, यहां सभी की पालना करनी है, एक ना मिले दूसरे से, सब वन वन की काठी, सभी की पालना करना है। एक मां होती है, उसमें कितनी बातें होती है, कितना पेशेंस होता है, कितना टॉलरेंस होता है, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। आज की मुरली किस पर है, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पर, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, किताबें लिखी गई है इस पर कितनी सारी, तो दूसरा प्रश्न है पालना। तीसरा प्रश्न है विधि क्या है पालना की, किस विधि से पालना करें, अभी ये है चर्चा, या है ये है आज की मुरली में चिंतन का विषय। हमें पालना करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि हम ये है ये है ये है ये है, इसलिए कैसे पालना करें, आत्माओं की पालना करनी है। सबसे पहले तो समान की स्मृति, मैं ये हूं इसलिए पालना करनी है। अब इसमें क्या क्या बातें आएगी, इसमें वो सभी बातें आएगी जो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में आती है, इसमें वो सभी बातें आएंगी जो एक मां के अंदर रहती है वो सारी बातें। तो क्या क्या करेंगे? इस सृष्टि के माता पिता बन जाना है। क्या करना है? माता पिता। तो क्या क्या करेंगे, कैसे पालना करेंगे? सबसे पहला है एक्सेप्टेंस। उनको वैसे ही स्वीकार करो जैसे वो है, जैसे है, जो है, जैसे है, वैसे ही उनको स्वीकार करो। सबसे पहले तो, पहले तो हमारे मन में हमने उनको रिजेक्ट कर रखा है, एक्सेप्ट ही नहीं किया है वो आगे, बाकी की तो बात ही बाद में। वी हैव रिजेक्टेड सोल्स, को हमने रिजेक्ट कर रखा है। कुछ कुछ आत्माओं के प्रति हमारे मन में अंदर गहरी घृणा भरी है, रिजेक्ट लिस्ट में है हमारी, वो ब्लॉक लिस्ट। सभी को स्वीकार करना, और कैसे स्वीकार करना? जैसे वो है वैसे, तुम जैसे चाहते हो वैसे नहीं, जैसे वो है वैसे, उसको वैसे ही स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। ये पहला काम है। दूसरा, उनके प्रति शुभ भावना है, सभी के प्रति, चाहे कोई भी हो, कितनी भी गिरी पड़ी आत्मा हो। बाबा कहते हैं ना, रावण से भी 100 गुना बदतर हो, फिर भी कैसी भी आत्मा हो। अगला, उनकी केयर करना, अप्रिशिएट करना, उनके सभी अवगुणों को संभाल लेना। मां क्या कहती करती है, उसके बेटे में अगर कोई अवगुण होती है तो सबके सामने जाके बता दिए क्या? छिपाती है उसको। राजा बेटा, अगर उसने अपराध भी किया है तो मां प्रयत्न करेंगी कि उसका दंड कम हो जाए। मदर, मदर्स हार्ट, चाहे उसमें कितने भी अवगुण हो फिर भी प्यार करती है उससे। टॉलरेंस, पालना कैसे करेंगे? आत्माओं की पालना करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सहन करना पड़ेगा, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, टॉलरेंस चाहिए। कैसे पालना करेंगे? आत्माओं की रिस्पेक्ट देकर, हरेक के लिए रिस्पेक्ट, चाहे कोई कैसा भी हो। यदि हम किसी की ग्लानी करते हैं और अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, पीठ पीछे उसके बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ये एक सूक्ष्म हिंसा है, और जो हम कर रहे हैं उसका बड़ा सूक्ष्म हिसाब बनता है। हम देख रहे हैं वो यहां है नहीं, परंतु हम जिसके खिलाफ जो बोल रहे हैं, ये याद रखना, वो बात उस तक कभी ना कभी पहुंचेगी जरूर, कोई ना कोई पहुंचाएगा। संदेश वाहकों की कमी नहीं है। स्पिरिचुअल नारद, स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट, क्योंकि सभी आत्माएं जुड़ी हुई है एक दूसरे से। एक ऑफिस में दो लोग एक साथ ज्वाइन करते हैं, और जो एक होता है वो हमेशा अपने बॉस की गलती निकालता है, कहता है ये जो बॉस है ना उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, हमेशा इंग्लिश में गलती करता है, उसको बोलने नहीं आती, उसका ग्रामर ठीक नहीं है, उसका प्रोनंसिएशन ठीक नहीं है। हमेशा वो जो दूसरा दोस्त है उसके साथ में बात करते रहता है, इसके लिखने में भी गलती है, उसको ठीक से आती नहीं है, सीखना चाहिए उसने। 6 मास हो जाते हैं, 6 मास के बाद में जो दूसरा दोस्त होता है उसका प्रमोशन हो जाता है, इसका नहीं होता है। वो गुस्से में जाता है, कहता ये क्या है, उसको आपने प्रमोशन लेटर दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? बॉस कहता है वो क्या है, वो मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है ना, मैं क्या करूं, कैसे दूं तुमको? जो जो हमने बोला है वो पहुंचेगा। तुम यदि किसी की ग्लानी करते हो तो तुम्हारी 2 गुना होगी। तो क्या करो? महिमा करो, अप्रिशिएट करो, केयर करो, अटेंशन दो, ध्यान रखो, क्या चाहिए उनको, प्रेम दो, खिलाओ पिलाओ, बाबा ने कहा ना आज भोजन आत्माओं को क्या चाहिए, पढ़ाई पालना प्रेम मदद, जरूरत के समय मदद करना किसी को, अपना ज्ञान योग छोड़कर जब हम किसी की मदद करते, ज्ञान योग का समय छोड़कर हम देखते हैं हॉस्पिटल में कई बार पेशेंट्स एडमिट होते हैं, उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं वो भी यहीं के सब होते हैं, बीके भाई बहने, वो अपनी सारा उधर का अपना ज्ञान योग छोड़कर एक अटेंडेंट बनना, एक केयर टेकर बनना बहुत बड़ी तपस्या है। किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना 24 घंटा बहुत सारा त्याग है उसमें, बहुत बड़ा त्याग है उसमें। फिर आपकी कोई दिनचर्या नहीं रहती, आपका कोई अमृत वेला नहीं, कोई योग नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ वही व्यक्ति है। वो रात भर जागता है, खांसता है, आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है, परंतु उसमें दुआएं, अभी मुरली थी ना, रॉकेट है वो दुआ, तेजी से पुरुषार्थ आगे बढ़ जाता है। तो आत्माओं की पालना कैसे करेंगे, उनकी मदद करके। आत्माओं की पालना कैसे करेंगे, सहन करके। आत्माओं की पालना कैसे करेंगे, प्रेम देकर, सहयोग देकर। आत्माओं की पालना कैसे करेंगे, अप्रिशिएट कर, रिस्पेक्ट देकर। आत्माओं की पालना कैसे करेंगे, निरंकारिता से, निस्वार्थ भाव से, विनम्रता से। आत्माओं की पालना कैसे करेंगे, वो दिव्य गुणों की जितनी लिस्ट है ना उधर हिस्ट्री हॉल के बाहर, उसको पढ़ लेना, वो सब लाके। और एक काम करना है अमृत वेला, स्टेप नंबर 1, आत्माओं का आह्वान करो। क्या करना है, आत्माओं का आह्वान। स्टेप नंबर 2, आत्माओं से बातें करना। फिर क्या करना, आत्माओं से बातें करना। स्टेप नंबर 3, आत्माओं को दृष्टि देना, दृष्टि से उनकी पालना करनी है। 4, उनके सिर पर हाथ रख दो, वरदानी हस्त रख दो। अगला, उन्हें अनुभव कराओ। किसका अनुभव, परमात्मा प्रेम का अनुभव कराओ, अशरीरीपन का अनुभव कराओ। और जरूरी नहीं है कि वो हमारे सामने हो, मुरली में बोला ना कहाँ है, कहीं पे भी रहने दो उनको, सारा संसार एक समंदर है प्रकंपनों का, हम किसी भी आत्मा को कहीं पर भी इमर्ज करके किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज जस्ट अबाउट एक्सपांडिंग द स्पीयर ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने कॉन्शियसनेस के दायरे को बढ़ा देना है, चेतना को, सब जगह पर कहीं पर भी हम पहुंच सकते हैं। अगला, और क्या करेंगे, आत्माओं के सिर पर हाथ रख दिया, परम प्रभु प्रेम का अनुभव करा दिया, उनको तिलक दे दो या उन्हें कोई ईश्वरीय सौगात दे दो। और क्या करेंगे, अमृत पिला दो और क्या करेंगे, तोले भी खिला दो, और क्या करोगे, आत्माएं तड़प रही है संसार में, उन्हें मुक्त भी करना है। उन्हें क्या करना है, मुक्ति देनी है। उस शरीर को, जर्जर हो चुका है शरीर, उसमें अटकी उससे मुक्त हो जाए, और उस मुक्त हुई आत्मा को ऊपर जाते हुए देखना है, और फिर सतयुग में आते हुए भी देखना है, या फिर उस आत्मा को फरिश्ता बनते हुए देखना है, अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होते हुए देखना है। अलग अलग अभ्यास करने, पर ये रोज करने हैं, यही हमारी आत्माओं के लिए पालना। हम एक एक की बैठ के पालना नहीं कर सकते, हाँ जितने लोग हैं आसपास उनकी तो करें, परंतु सबकी बात, सभी आत्माओं की पालना विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। सब कौन है, हमारे हैं, सबसे हमारा कनेक्शन है, सभी से हम जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, होल वर्ल्ड, विश्व ग्राम है ये, एक परिवार है विश्व, एक विलेज है, सब हमारे और हम सब के वासुदेव कुटुंबकम। तो ये सब लोग क्या करेंगे, रोज अमृत वेला सकाश, सबको सकाश आह्वान करना, इमर्ज करना, आह्वान करना, उनको दृष्टि देना, उनसे बातें करना। क्या बातें करोगे आत्माओं से, आत्माओं से क्या बातें करोगे, अगर उसको दुख दिया है तो माफी मांग लो, अगर उसने दुख दिया है तो माफ कर दो, माफी मांगना, माफ करना, और तीसरा धन्यवाद, कितना सहयोग दिया, हम कितने कमजोर थे, उसकी निंदा की वजह से ही हम इतने शक्तिशाली बने हैं। तो धन्यवाद तो देना बनता है ना, सभी के लिए धन्यवाद। माफी मांग लो, माफ कर दो, या ऐसे ही बातें करो, हे पूर्वज आत्माओं, आज की मुरली में है ना, हे देवकुल की आत्माओं आ जाओ, हे महान आत्माओं आ जाओ, हे आत्मा तू कहां भटक रही है, कितनी दुख में है, कितनी दर्द में है, कितनी पीड़ा में है आत्मा, कम आ जाओ। मधुबन से आह्वान करो आत्माओं को, जो आत्मा आज सारे दिन भर वो जो टोल नाका जो है ना, वहां पे एक सुबह सुबह अमृत वेला लकीर खींच देना, अदृश्य लक्ष्मण रेखा, कि आज जो इस लकीर को क्रॉस करेगा उसको प्रभु प्रेम का, वहां खड़े रह जाना तीर लेके, तीर लग जाए, जो भी आएगा इधर, जो भी, सभी सेंटर जो है, सेंटर के इर्द गिर्द सुबह सुबह एक लाइन, जो भी इसमें प्रवेश करेगा आज उसको प्रभु प्रेम का अनुभव हो जाए, नए नए संकल्प। तो कर्तव्य क्या है हमारा, आत्माओं को सकाश देना, और उसकी विधि विजुअलाइजेशन, ग्लोब के ऊपर चले जाओ, झाड़ के नीचे चले जाओ, अलग 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 विधि से सकाश, सकाश देना एक ऐसा अभ्यास है कि कितना लंबा समय उसमें जा सकता है आराम से। एक भाई कहते थे ना, मंदिर में खड़े हो जाओ, मैं दुर्गा हूं, एक एक आते रहेगा भक्त, एक घंटा तो चला जाएगा उसमें, अभी आया, फिर दूसरा दुखी आया, परेशान आया, फिर भयभीत वाला आया, फिर स्टूडेंट आ गया, हे प्रभु मुझे एग्जाम में पास कर दो, फिर वो गया, फिर वो दूसरा आया, मेरी शादी करा दो, फिर वो तीसरा आया, कितने भगत आते रहते हैं। हे प्रभु आज चोरी में बहुत अच्छा हाथ लग जाए, कुछ करो, भगवान के लिए कितना एंटरटेनमेंट होगा, कितने अलग अलग कैटेगरी के वैरायटी लोग आते रहते हैं और वैरायटी चीजें मांगते रहते हैं। तो योग को एंटरटेनमेंट बना देना है, ये सकाश देने की जो सेवा है, बाबा ने कहा ये सेवा है तुम्हारी, इसी में बिजी रहो, एक सेकंड में अलर्टनेस को लाओ और इसमें बिजी रहो, ये सेवा है। और हायर कॉन्शियसनेस, एक होता है हम पहले आत्माभिमानी बनते, फिर बाबा से बात करते, सूक्ष्म वतन में जाते, परमधाम में जाते, ये सब करते, एक दूसरी विधि है सीधा सकाश से चालू करना, सीधा मैं ग्लोब के ऊपर हूं, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पांचों खंडों के ऊपर घूमो, उसके अंदर जितनी आत्माएं हैं उन सबको सकाश, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चले जाओ, एशिया के ऊपर चले जाओ, अफ्रीका के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, पांचों खंडों को सकाश, उसमें सब आ गए, सब आत्माएं उसमें सब आ गए, या पूरी ग्लोब को सकाश। अभी चौथा प्रश्न है क्या, हलचल में क्या करना है, हलचल होती है तो हमारा इंटरेस्ट किस में होता है, न्यूज में, क्या हुआ क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग होगी उतनी उसमें व्यर्थता होगी, बाबा के महावाक्य है। इसके लिए जैसे ही न्यूज सुनते हैं तो क्या करना है, सकाश तुरंत, सहन शक्ति दो, तुमने जो शक्तियां प्राप्त की है उन शक्तियों का उनको अनुभव कराओ, उनको शक्तिशाली बनाओ, राहत दो, और क्या दो, आग में है तो शीतल जल डालो, ये काम तुम्हारे है। ये बताने के लिए बहुत अच्छा है और सुनने के लिए भी बहुत अच्छा है, पर जब परिस्थिति आती है तब सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, पर इसका डेली अभ्यास करना है। और ये सकाश, हमारी एक आदत ऐसी हो गई है कि हम सकाश देते हैं, कब देते हैं, सुबह, है ना, क्योंकि हमारा पैटर्न बन गया है, वो एक मेंटल पैटर्न, मेडिटेशन का पैटर्न, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, मैं आत्मा हूं से चालू करेंगे, सूक्ष्म वतन में जाएंगे, फिर तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे भी हो, तुम वैसे भी हो, फिर परमधाम में हूं और फिर उधर हूं, सतयुग में हूं, ये हूं वो हूं, इसको सकाश और उसको सकाश और तब तक पौने पांच तो बज ही जाते, खत्म। इसके बाद में जिनको सकाश दिया उनसे अब कोई लेना देना नहीं, तुमसे कनेक्शन केवल सुबह तक ही है। अगर दिन में मिल गए तो खबरदार रहना, कुछ भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। हाँ आज झगड़ा करेंगे बट नेक्स्ट डे माफी भी मांगेंगे, सब कुछ करेंगे, पर दिन में जैसे लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है अपनी एक बुक में, इसके पहले भी सुनाया था, वो लियो टॉल्स्टॉय सुबह सुबह रशिया में सुबह सुबह 4 बजे चर्च चला जाता है। एक बार अचानक उसके चर्च के अंदर से आवाज आने लगती है, एक व्यक्ति गिड़गिड़ा कर कह रहा है, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूं, मैं अत्याचारी हूं, मैं लोगों को कितना दुख देता हूं, लोगों के पैसे हड़पता हूं, हे प्रभु मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। एकदम रो रो के गिड़गिड़ा कर वो व्यक्ति कह रहा है। लियो टॉल्स्टॉय उस गेट पर खड़ा रहता है, सुनता है ये आवाज जुड़ी पहचानी थी लग रही है, किसकी आवाज है ये व्यक्ति इतना दुखी और कितना प्रायश्चित कर रहा है अपने पापों के लिए, कितनी महान आत्मा होगी वो। तब तक वो व्यक्ति बाहर आ जाता है, देखता है लियो टॉल्स्टॉय को, लियो टॉल्स्टॉय तुरंत उसको पहचान देता है, ये तो हमारे गांव का जो सबसे रईस आदमी है, साहूकार वो है ये। वो साहूकार उससे कहता है, तुमने कुछ सुना तो नहीं ना, खबरदार अगर ये बात कहीं बाहर कही तुमने, केस कर दूंगा, जो कुछ बोला वो उसके और मेरे बीच में, बाकी दिन भर जो चलता है वही चलेगा, वैसा ही होता रहेगा। वैसे हमारा मेडिटेशन सुबह का फिक्स है, जो हर एक ने सोच रखा है और हर एक कितने सालों से कर रहा है विद लिटिल मॉडिफिकेशन, इधर उधर से क्लास वगैरह सुन ली तो एक आध दिन मॉडिफिकेशन होता है, बाकी रहेगा वही पैटर्न, शाम को भी वही। इसलिए हमारी सकाश सुबह और शाम ही नहीं, उसको क्या करना है, चलते फिरते उठते बैठते, स्टेशन पर है पूरे एयरपोर्ट को सकाश, यहां से नीचे जा रहे अबू रोड, क्या सोचना है, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही है पवित्रता की, दिन रात ये पुरुषार्थ। तो विधि क्या है, विधि और फिर हलचल की जो परिस्थितियां होगी वहां पर ही प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, परंतु पहले प्रैक्टिस कहां चाहिए, एकांत में, मौन में, फिर कहीं पर भी की जा सकती है, मार्केट में, कहीं पर भी, सेम कॉन्शियसनेस, फिर क्योंकि आफ्टर ऑल सब कुछ कनेक्टेड है। एक हीलिंग टेक्निक है जिसको कहते हैं प्राणिक हीलिंग, सुना होगा, बहुत सारे क्लासेस कोर्सेस होते हैं उसके, उसमें क्या करते हैं, प्रकृति में जो ऊर्जा है वो हीलर लेता है और सामने वाले व्यक्ति को हील करता है, परंतु वो हीलर अनुभव करता है कि हीलिंग सेशन के बाद उसकी अपनी ऊर्जा कम हो जाती है। इसके लिए चीन में जो हीलर्स होते हैं वो एक दिन में 2 ही पेशेंट देखते हैं बस, हमारे जैसा नहीं है इधर भारत में 50, 70, 100, 200, 400 की ओपीडी चलती है इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, 1 पेशेंट या 2 पेशेंट बस, क्योंकि वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है उसमें, उसको यहां दर्द है उस दर्द के एरिया में एनर्जी ट्रांसफर करता है और फिर उसको खुद को स्वाइप करना, स्वीप, क्योंकि एनर्जी चली गई, परंतु सारा खेल एनर्जी का है। इसलिए पर एक अवस्था वो भी है कि जिसमें हम ये जानते हैं कि हमारी अपनी ऊर्जा इतनी ऊंची है कि फिर कहीं पर भी जाओ, चांद पर जाकर बैठ जाओ तो भी एनर्जी डिप्लीट कम नहीं होगी, कितनी भी तमो प्रधान आत्माओं के, विकारी आत्माओं के संपर्क में आने के बाद में भी हमारी ऊर्जा सेम रहेगी, कम भी हो गई तो थोड़ा सा एकांत में जाके फिर खुद को चार्ज कर लेना, और कम तो होती है, सुबह जो चार्जिंग होती है वो दिन, तो दुख की लहर तुम्हारे पास आ नहीं सकती पर आ रही है, उसका क्या करे, सारा ज्ञान है, सब कुछ है, फिर भी दुखी है क्या कारण है दुख का, क्या हमारे ज्ञान योग ने दुख को क्यों नहीं दूर किया जीवन का, ये अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है। इतने साल से की मुरलियां सुनी, लिखी, क्लास की, कराई, सुनी, सब कुछ किया, सेवाएं कितनी धारणाएं तो टॉप लेवल की है, कभी अमृत वेला मिस नहीं, कभी मुरली मिस नहीं, कुछ नहीं, फिर भी जीवन से दुख क्यों नहीं जा रहा, ये अपने आप से पूछना है। कोई ना कोई छिपा हुआ दुख है। बाबा कहते हैं दुख की लहर ही नहीं आ सकती। फिर दादियों से क्या कहा, रहम दिल हो, अटेंशन प्लीज देना है, जो भी आत्मा सामने आए उसको कुछ ना कुछ देना है, मनसा वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा। मधुबन के आंगन में बैठे बैठे ही जो कुछ जो आ रहे हैं जा रहे हैं सबके प्रति थॉट्स क्रिएट करने हैं, इनका भी कल्याण हो जाए, इनका भी कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका। स्लोगन, मन बुद्धि को क्या करना है, कंट्रोल में रखने वाले ही क्या है राजयोगी। स्मृति और विस्मृति का ये खेल बना है। इसमें कलयुग में क्या है, कलयुग में जाना ही नहीं उधर, वहां क्या है रौनक, और रौनक क्या करती है धोखा। ऐसे धोखा न खाने वाली आत्माओं को, ऐसे स्मृति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे मन बुद्धि को कंट्रोल में रखने वाले राजयोगियों को, ऐसे विस्मृति के चक्कर में न आने वाली आत्माओं को, ऐसे सेवा में मस्त रहने वाली आत्माओं को, ऐसे नियरेस्ट और डियरेस्ट, परमात्मा की नियरेस्ट और डियरेस्ट आत्माओं को, सेवा स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, ऐसे ऊंची स्थिति वाली आत्माओं को, ऐसे फाउंडेशन आत्माओं को, बीज फाउंडेशन, जड़े, पूर्वज, पूज्य, रहम दिल, सबकी पालना करने वाली आत्माओं को, हर पत्ते से जिसका कनेक्शन है ऐसी आत्माओं को, ऐसे शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को, आत्माओं में शक्ति भरने वाली आत्माओं को, आत्माओं को राहत देने वाली आत्माओं को, आत्माओं में शांति की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति देने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ रचनाओं को, ऐसे फाउंडेशन, ऐसे पूर्वज पूज्य हो गया, ऐसे लाइट हाउस आत्माओं को, ऐसे अप्रभावित रहने वाली आत्माओं को, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर आत्माओं को, ऐसे सदा अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को, ऐसे स्वयं को शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे रूहानी माँ बनने वाली आत्माओं को, सबकी माता बनने आत्माओं को, ऐसे अलौकिक पालना देने वाली आत्माओं को, स्पिरिचुअल सस्टेनेंस, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। We'll be right back.